उसके बाद आप देखिए कि मुबशरीन के लफ्ज़ में अगर आप देखें तो बशारत और बुशरा है ना। बशर कहते हैं इंसान की स्किन की ऊपर की हिस्से को, ये जो आपकी मेरी स्किन मुझे दिखती है ना आपको, ये बशरा होती है। बशर खाल को छील देना कहते हैं, अल बशरू। खुशखबरी वो खुशी होती है जिसका असर इंसान की स्किन पे नजर आए। इसी से लफ्ज़ बुशरा भी है, बशीर भी इसी से है, बशर भी इसी से ही है, खाल वाला। यहां मुराद क्या है? मुबशरीन, नेक काम करने पे जन्नत की खुशखबरी देना। इसी तरह अबशरा इस तबशरा खुश होने को भी कहते हैं। तो यहां एक मानी लिख लीजिए, नबी लोगों को वो लाइफस्टाइल देते हैं जिसके नतीजे में लोगों को खुशी मिलेगी, लोगों की दुनिया भी अच्छी होगी। मुबशरात उन हवाओं को कहते हैं जो बादलों से पहले आती हैं और खुशखबरियां देती हैं। फिर इसी तरह लफ्ज़ देखिए नज़ीर, नुज़ुर से बहुत आम लफ्ज़ है, उम्मते वसत का काम भी यही है। नुज़ुर कहते हैं नुकसान से बचने के लिए जो कुछ अपने ऊपर वाजिब करार दे लिया जाए, किसी शर्त पर कोई वादा करना। मतलब कोई शख्स कहता है अगर मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो गया तो मैं ये काम करूंगा। इसी से लफ्ज़ नज़र भी है, नज़र मानना, मन्नत मानना। किसी मामले के पेश आने पर किसी ऐसी चीज को अपने ऊपर वाजिब करना जो वाजिब ना हो। तो फिर यहां डराने और डरने का मानी कैसे हुआ कि आपने अपने ऊपर कुछ चीजें लाजिम कर ली, चुकन्ना रहना, बुरे अंजाम से वक्त से पहले किसी को आगाह कर देना, ये है नजीर। अरब लोग उस शख्स को नजीरतुल जैश कहते थे जो दुश्मन की नकलो हरकत पे नजर रखता था। आप कहते हैं ना जंगों में CIDs होती हैं, तो वो आगे आगे जाता था, फिर खबरें देता था, दुश्मन आज इधर पहुंच गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इसको नजीरुल जैश कहते थे। तो क्या पता चला कि नबी नजीर कैसे बनते हैं? कि गलत काम करोगे तो नतीजा बड़ा बुरा, जो काम करोगे वो गलत होगा, और इसी की जमा फिर नुजुर है। अल्लाह ताला मुझे आपको यही खूबसूरत तरीका सिखाते हैं कि पहले तबशीर फिर नजीर। जब लोगों को और खासतौर पे छोटे बच्चों को होश आ रहा है, जिनको भी समझ आ रही है, दीन की बातें बताएं ना, हमेशा पहले तबशीर। यहां देखिए तकदीम है, पहले लफ्ज बशारत है फिर नजारा। जब तक किसी को आपने खुशखबरी नहीं दी, आप उसको उसके बारे में बुरा बात कैसे कह सकते हैं? तो बहरहाल नबियों को अल्लाह ताला ने भेजा, फबअसल्लाहु नबीयीन मुबशरीन वअनज़ल माहुमुल किताब बिलहक। इससे क्या पता चलता है? हर नबी के पास साउंड नॉलेज था, किताब लेकर आए। क्यों? लियहकुमा बैनन नास, ताकि लोगों के दरमियान में हक के साथ फैसला करें। क्या पता चला कि नबियों ने अपने से बातें नहीं की, और आज भी बेहतरीन इल्म वो है जो किताब के साथ हासिल होता है। किसी की बातें, किसी की लोरियां, ये कोई बात नहीं है, ये भी इसमें अमल की बात निकलती है। और साथ ही एक और बात पता चल गई कि बैनन नासी फी मख्तलफु फीही, किताब ही सारे इख्तलाफात का हल है। बात समझ गए? आज मुसलमान बटी हुई है ना कितने फिरकों में, आप सारे फिरकों को चाहते हैं कि जुड़े, चाहते हैं ना, हर एक चाहता है, उसका तरीका किताब। हर एक अपनी किताब छोड़े और अल्लाह की किताब ले ले, नबी की हदीस को ले ले। हालांकि दावेदार सारे इसी चीज के होते हैं, फिर भी इंसानों की लिखी हुई किताबों को बुनियाद बनाकर फिर अल्लाह की बात या नबी की सही बात को भी छोड़ने लगते हैं। इसीलिए अल्लाह सुबहाना तला फरमाते हैं कि इसकी वजह क्या थी, व मख्तलफ फीही लल्लज़ी नौतूहू, इख्तलाफ कोई नहीं करता सिवाय उसके जिनको दी गई। देखिए लफ्ज़ ऊतूहू है, आता यूती भी होता है, और इसको अगर आप देखें कि उनको दी गई थी किताब, यानी इल्म वालों में इख्तलाफ ज्यादा आता है। सहूलत के साथ किसी जगह आने को आता कहते हैं। आपको कोई आवाज देता है बुशरा, तो आप कैसे क्या कहते हैं? आती हूं। ये उर्दू में भी यही बोलते हैं हम, ईताई ज़कात है, सहूलत के साथ आ जाना होता है। ठीक है, पानी के रास्ते को आसान करना, ये भी इसी में आता है। कुरान में आ गया, पढ़ेंगे मातिया, अल्लाह का वादा क्या है? मातिया, सूरत मेराले जी मरियम में आएगा, आयत नंबर 61 में, जरूर आने वाला, यानी अल्लाह का वादा पूरा होगा। तो क्या पता चला कि उनको दिए गए थे किताब, मिम्बादी मा जातहुमुल बय्यिनाति बग़्यन बैनहुम। इसको हाईलाइट कर लें, लफ्ज़ बगी को बस समझ लें तो आपको आयत समझ आ गई है कि इंसानों की असल गुमराही का सबब बगी थी। और बगी किसको कहते हैं? हसद। बगावत। मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ। आज भी इन सारे मसलक और सारे फिरकों में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो बगी का। बगी को आप ऐसे उर्दू में समझ लें जैसे आप कहते हैं जिद्दम जिद्दा, मुझे जिद चढ़ गई है। बगी कहते हैं दरमियाना रवि की हद से भट जाने की ख्वाहिश, चाहे कर सके पूरी ना कर सके। अलबगयू कहते हैं बहुत ज्यादा बारिश को जो हद से भट जाए। बगत इस समाओ, बादल अपनी हद से भड़ गया, यानी जब बहुत ज्यादा बारिश हो तो कहते हैं बगत इस समाओ। और इसके बीच में दो चीजें होती हैं, ये बहुत अहम है, लिखिएगा। नंबर एक, किसी चीज की तलब, और दूसरा बिगड़ जाना। ये जो बगी यहां आई है ना, ये असल में दीन वालों के किसी चीज की तलब का नाम है। मेरा नाम, मेरा होता, मेरी बड़ी बात, मेरा ये मेरा वो। और ये बगी थी जिसने यहूद को अल्लाह के नबी से फायदा लेने से दूर कर दिया। हजरत सफिया की वो मशहूर रिवायत आपने पीछे भी सुनी थी कि बाप और चचा की बातें सुनती हैं और वो दोनों आखिर में कहते हैं कि हमें पता है कि ये वही शख्स है जिसका तذکرہ था, लेकिन हम इसकी मुखालफत ही करेंगे जब तक हमारी जान में जान है। आयत 90 में हमने इसकी तफसील पीछे पढ़ी थी। तो ये चीज इंसान को नुकसान देती है। देखिए, शौहर बीवी में भी जब ये जिद आ जाती है ना, वो घर तोड़ लेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। दीन की जिद तो सबसे बुरी जिद है। इंसान जब दीन को सामने रखता है तो बात होती है। अच्छा, यहां तक अब बात कितनी हुई, दो जुमले। शुरू में सब लोग तौहीद पे थे, फिर आपस में बड़ा छोटा बनने के शौक ने लोगों को आपस में लड़ा दिया। फिर क्या हुआ, बड़ी खुशी की बात है आपके लिए, आयत में खुशखबरी है, फहद अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह ने हिदायत दी ईमान वालों को। फितनों के दौर में भी, इख्तलाफात के दौर में भी अल्लाह हमेशा एक गिरोह को हक पे रखता है। अल्लाह के नबी की यह हदीस से भी मिलता है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे जिसमें से एक नाजी होगा और 72 नारी होंगे। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है हर फिरके वाले ने उसके आगे अपना नाम लिखा हुआ है कि ये नाजी फिरका वही है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। हालांकि जब सहाबा ने यह सवाल पूछा था तो अल्लाह ताला के नबी ने क्या जवाब दिया था, मा अना अलैहि वसहाबिही, निजात पाने वाला फिरका वो होगा जो अपनी निस्बत किस दीन से जोड़ेगा, मा अना, जिसपे मैं हूं, वसहाबी और मेरे सहाबा। बीच में उम्मतों में और आयमा कराम पे और फुकहा पे नहीं रुक जाएंगे, वो अपने दीन को कुरान और सुन्नत के साथ लेकर आएंगे। तो इसमें खुशखबरी है आज के लिए भी। बस लोग कहते हैं आज तो कोई भी ठीक नहीं है, तो ये गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर दौर में कुरान सुन्नत को मानने वाले मौजूद रहे, और वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिराति मुस्तकीम, अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है, यानी ये अल्लाह की शान है। इससे क्या पता चलता है, यहाँ कौन है आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ मन से कौन मुराद है? इसी आयत के अंदर जवाब है, अल्लाह किसको हिदायत दिखाता है किसको नहीं दिखाता। बगी जिसके दिल में होती है ना, उसको नहीं दिखाता। यहां से क्या पता चलता है, आप देखिए कि हजरत उमर फारूक खराबियों में पड़े हुए थे, अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह ने उमर को रास्ता दिखा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के लिए भी दुआ की थी, पर उसमें बगी थी, उसके दिल में बड़ा बनना था। आज भी दुनिया में गुनाहगार दो किस्म के होते हैं, एक नफ्स के गलबे से गुनाह करते हैं ना, इट्स ओके, बाज आ जाएंगे, पर जो बगावत पे आ जाता है ना, वो कभी नहीं पलटेगा। तो इससे क्या पता चलता है, मेरे आपके लिए अमल की बात है कि अपने अंदर से इस चीज को निकाल दें। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत होती है। और अब इसके बाद जो अगली आयत है, ये असल में आपको पहली आयत की याद दिलाएगी जो आज के सबक के साथ ही, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। थोड़ा सा जहन में रखिएगा, आज के दौर में आप और मैं कहते हैं कि इस्लाम पे बड़ी मुश्किलें हैं, मुसलमान अमल नहीं कर सकते, फिर बातें होती हैं, फिर मीडिया में बातें आती हैं, सो ऑन, जो आपने इर्द गिर्द सुना है उन बातों को। और इसके अपोजिट जरा मक्का के माहौल को जहन में रखिए, सीने पे पत्थर, तपती रेत, गले में रस्सी डाल के कुत्तों के हाथ में दे देना, इतनी बड़ी मुश्किलात गुजर रही थी उस कौम पे जिसने इस शरीयत को उठाना था। फिर खराज तहसीन पेश करूंगी मुहाजरीन और अंसार को। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, हम हसिब तुम अंतदखुलुल जन्ना, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम जन्नत में जाओगे, यानी छोटी सी बात पे तुम्हें आएगा। और आप नोट कीजिए, लरजाने वाली आयत है, صحابہ کی ایک بڑی تعداد یا مہاجرین کی تھی جو مکہ سے سختیاں جھیل کر آئے، اور اب آگے جو مرحلے آنے والے ہیں ان کے لیے وہ اتنے بڑے نہیں ہوں گے، لیکن جو انصار تھے، یہ نوٹ کیجئے گا، انصار مدینہ کے لیے اسلام ایک نئی نئی چیز تھی. ابھی انہوں نے مشکلیں نہیں جھیلی جو مہاجرین نے جھیلی، ہجرتیں نہیں کی، قربانیاں نہیں دی، اور انہوں نے ابھی وہ نہیں چھوڑا جو کہ چھوڑنا پڑتا اللہ کے راستے میں. تو یہاں خبر دی گئی کہ مسلمانوں کی منصب کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی ادائیگی قربانی کی طالب ہے. امت مسلمہ جب تک قربانیاں نہیں دے گی بات نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا اپنے آپ کو دیکھو، کیا ایسی خواہشوں سے جنت مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تمہارے پاس تو بھی وہ مثالیں ہی نہیں آئیں، وہ حالات ہی نہیں آئے. یا جو مثل ہے نا، حالات کے معنوں میں مثال، الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے تھے، کیا ہوا تھا ان کو؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، چھوئی تھی ان کو، ٹچ کی تھی، مسا یا مسو سے، باسا ذرہ اور زلزلو، تین تکلیفیں، بوس پہنچا، جنگیں، لڑائیاں، فاقے، باتیں، مشکلات، اور دوسرا ذرہ تکلیفیں، جسمانی چوٹیں، جانیں بچانی پڑی. حق کے راستے میں قربانیوں کا سفر اس قدر طویل ہے جتنی تاریخ انسانی طویل ہے. ہر دور کے نبیوں اور ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی گئیں، مشکلات پڑی. سب سے پہلے تو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، حضرت نوح خود، قرآن میں آپ دیکھیں سورۃ قمر، سورۃ نوح اس بات کی گواہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نوح کون ہے؟ جس کو جھڑکا گیا، ڈانٹا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کو دیکھیں، حضرت ابراہیم کو دیکھیں، ہر ایک کی لمبی فہرست داستان ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتاتے ہیں، اے مسلمانوں، اے نبی کے ساتھیوں، ابھی تو اتنی مشکلیں آئیں بھی نہیں ہیں، اور دیکھو قریب میں دیکھو جو مکہ سے ساتھی ہجرتیں کر کے آئے ہیں وہ کیا کیا چوٹیں کھا کے آئے ہیں. اور اسلام پر تو ایسے وقت گزرے کہ وہ زلزلو، زلزلے آئے، کون سے؟ زمین پہ نہیں، ان کے نفس پہ، ان کی انا پہ زلزلے پڑے، ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے بول اٹھے، کب آئے گی مدد اللہ کی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب، ان کو خوشخبری دے دو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے. اللہ اہل ایمان کو آزماتا ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتا ہے. ہم 19ویں رکوع کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، والا نبلو انکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. آپ اور میں اس عقائد کو پڑھ کے ذرا سا سوچیں کہ آج کے مسلمانوں کو کیا مشکلیں، تو ہنسی آئے گی رونا آنے کی بجائے. ہم تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگ جاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، ہمیں یہ کہہ دیں گے، ہمیں وہ کہہ دیں گے، تو کیا ہوا؟ دیکھیے فزیکل ٹارچر سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو کوئی کھڑا ہو کے 10 گالیاں دے نا، آپ سن لیں گے، لیکن ایک بندہ آپ کے پاؤں کے ناخن پہ کھڑا ہو جائے نا، چیخیں نکل جائیں گی، آپ اس کو جو اپنے سے دور کریں گے. فزیکل ٹارچر تھے، یہ وہ چیز ہے. وہ کہتے ہیں نا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس راستے میں مدد آتی ہے، لیکن آزمائش اور قربانیوں کے بعد. اگر مجھے آپ کو اللہ کی مدد چاہیے تو ابھی صبر کرنا پڑے گا. حضرت یحییٰ جیسے نبی کا سر کاٹ کر محبوبہ کے لیے پیش کیا ایک شخص نے، حضرت عیسیٰ یہود کی سازشوں کا شکار ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے حملے، حضرت خباب بن نرت جلتے کوئلوں پہ رکھا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، اللہ کے نبی کو تلاش کرتے ہوئے مسجد حرم میں پہنچے، اور اس طرح کی ان کی کیفیات تھیں کہ اللہ کے نبی ان کی حالت دیکھ کے رو پڑے. تو آج میں اور آپ اپنے آپ کو اتنے نازک اندام نہ سمجھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں، ذرا سا اپنے آپ کو جما کے رکھو، پھر دیکھو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب. اور یقین کریں، میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں نا، آج کے دور کے مسلمانوں کے پاس یہ مدد بڑی قریب ہے. مبشر المومنین، اب حالات دنیا کے جو بن رہے ہیں نا، اب ہماری یوتھ اٹھ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب امت کے جوانوں کے اندر جب غیرت آ جاتی ہے نا، تو پھر ان کے حالات بدلے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے دین سے جمو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جواب ہے، ان مشکلات کا حل کافہ. दाखिल हो जाओ। देखिए तकलीफ देने वाला बड़ा है या इन तकलीफों से बचाने वाली जात बड़ी है। जब हम उस जात के साथ ताल्लुक जोड़ लेते हैं, एक पर मारा था जिब्राइल ने, पूरी कौम अंधी हो गई थी। आज भी हो सकता है, हो क्यों नहीं रहा, अभी वो ईमान नहीं है। सहाबा का किरदार कितना खूबसूरत, आखिरियत बाहर बड़ी नॉन रेलेवेंट है लेकिन सबक के अंदर खुबी हुई है। उम्मत मुस्लिमा पर आजमाइशें और मुश्किलें कब दूर होंगी, जब अपने माल को रब का माल समझेंगे। माली मामलात बिल्कुल यही आयत आगे आनी है, वहां जवाब कुछ और था यहाँ कुछ और है। यस सलूना का माज युनफिकून, ये आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें। साहबा पूछते थे क्या करें, आज का मुसलमान अमूमन पूछता है क्या ना करूं। वाकई इस पे भी ज़कात है, अच्छा ये भी देना पड़ेगा, अच्छा सोना तो फिर सारा हमारी ज़कात ही खा जाएगी, ये वो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा क्या खर्च करो, बल्कि ये बता दिए कहाँ करो। कुल मान फक्तुम मिन खैर, कह दीजिए जो भी तुम माल खर्च करो अपने माल में से, यानी जो दिल करता है दे दो। यहां इस आयत को देखे ना, तो अगर हदीस ना साथ जोड़े तो पता क्या चलता है, जो माल है सब दे दो। यानी इस आयत की रोशनी में उलमा कहते हैं, हदीस को अगर अलग कर ले तो इंसान अपने माल में से कुछ नहीं रख सकता। आगे आप पढ़ेंगे कुले लफ, बस जरूरत का रखो बाकी दे दो। का नहीं, किसको देना है, फलिल वालिदैनि वल अक्रबीन वल यतामा वल मसाकीन वबनि सबील, तो वालदैन रिश्तेदारों यतीमों मिसकीनों और मुसाफिरों के लिए खर्च करो। अभी नया नया दीन शुरू हो रहा था, ये जहन साजी की जा रही है, सबसे पहले माँ बाप का हक, फिर रिश्तेदार यतीम मिसकीन मुसाफिरों का, एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की जा रही है। अगर हम में से हर एक अपने अपने रिश्तेदारों को देख लेना तो गुरबत दूर हो जाएगी, अपनी गली के यतीमों को, अपने माशरे के मिसकीनों को, तो दुनिया में सब कुछ खुद ठीक होगा। और साथ ही कह दिया वमा तफलू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, जो भी खैर तुम कमाओगे अल्लाह उससे बाखबर है। जो अच्छा काम करोगे, खैर माल को भी कहते हैं और नेकी को भी कहते हैं, जो करोगे जैसा करोगे, वक्त की जरूरत देखो, नीड ऑफ आवर देखो, और अपने आप को अल्लाह के रास्ते में खपा दो। रात के अंधेरे में करोगे अल्लाह उसको भी जानता है, दिन की रोशनियों में करोगे उसको जानता है। दाएं से दो और बाएं को ना पता चले लेकिन अल्लाह को पता चल जाएगा। क्या पता चला इससे कि इंसान का कोई अमल जाया नहीं जाता। तो आप देखिए कि पूरे सबक को अगर आप एक स्ट्रेच में कर लेना, तो शुरू में इस्लाम में दाखिल होने की बात की और आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने हमें अपने रास्ते में और अपने करीबियों के ऊपर अपने माल को लगाने की बात की। आज आपको मुसलमानों की ये सारी कहानियां खुल के समझ आ रही हैं। जहां कमी बेशी अमल में, उसी में मुसलमानों के हालात बदल रहे हैं, उसी में मुसलमानों के लिए मुश्किलात से मुश्किलात आ रही हैं। और जब एक बंदा अपने आप को शैतान के हाथों में देता है, इसको भी जोड़ लीजिए, ला तत्तबी खुतवाति शैतान, शैतान के कदमों में बंदा जब फंसता है ना, तो उसकी अपनी जरूरतें ही नहीं पूरी होती। लो अब सारा रिश्तेदारों को दे दें, इनको तो आदत है मांगने की, और ये तो बस कहते हैं पैसे दरख्तों पे लगते हैं। देखिए अगर हम अपने किसी रिश्तेदार को कुछ देते हैं या दीन पे देते हैं तो जाया ना करें। अल्लाह ने हमें मौका दिए, देने वाले बने ना कि लेने वाले बने। इंशाल्लाह खर्च पे तो आगे बहुत सारी बातें होनी है, लेकिन आज के सबक से ये सोच लेकर उठिएगा कि हमने वैसा बनना जल्ला चाहता है, पूरा बनना है, पूरे दिल से बनना है, काफा बनना है, कुल्लुहुम सबके सब, और पूरे दिल की खुशी से बनना है। और 8 पॉइंट हमने पढ़े आज सलम के, उन सारों को सामने रख ले तो कोई लूप होल नहीं है हमारे दीन में। और फाइन जलल, तुम भटक जाओगे, कीचड़ से फिसलने को भी जलल कहते हैं। शैतान बंदे को ऐसे फिसलाता है पता ही नहीं चलता। खताएं हो जाए, तौबा का दरवाजा खुला, मौत का इंतजार नहीं करो, क्यामत आने से पहले तौबा कर लो, और रास्ते में जो ये कुर्बानी है, तो हम हसीब तो मन तदखुलुल जन्ना। आज भी आपको कहीं दीन की कोई बात मुश्किल लगे या कोई आपका मजाक उड़ाए या कुछ कहे, तो फौरन उस वक्त ये आयत याद कर लीजिएगा कि मेरे पर तो अभी ये हालात आए हैं, इससे पहले जो लोगों पे हालात आए थे वो तो मेरे साथ भी नहीं आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको मुझे बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए। इसका पूरा मेन थीम यही है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, होल हार्टेडली लो। आप किसी ऐसे मेहमान के लिए खाना पका रहे हो जिसका दिल ना करे पकाने को, तो आप यकीन करें हंडिया ही नहीं पकेगी आपसे। तो अल्लाह ताला हमें दिल की खुशी से, खुशी स्माइली चीयरफुल, हम खुश हैं, हमारे अल्लाह ने हमें ये चीज़ें दी हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसकी बरकत आपको अपनी जिंदगियों में महसूस होगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। जी, इनका सवाल है कि सबको देना आसान लगता है, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों को जो दिल दुखाएं और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको देना मुश्किल लगता है। तो आप देखिए, इसी में अजर है। अल्लाह ताला ने कुर्बानी का जज्बा दिया ना, तो अगर हम दूसरे को देते हैं जिसको देने को दिल भी करता है, तो वो तो आपकी अपनी खुशी हो गई, लेकिन आप जब उसको देंगे जिससे कुछ मिलना नहीं, तो अजर ज्यादा होगा। ये सिला रहमी है। जी जी बिल्कुल पूछा जाएगा। अगर हमारे करीब के लोगों को हमारी ज़रूरत थी और हमारे पास रिसोर्सेज थे और उनको छोड़कर हम लाखों के चंदे भी देते रहे, तो पूछोगे। देखिए, इस्लाम ये जो उदखुलु फिस सिल्मी काफ़ा है ना, एक बहुत खूबसूरत एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। आप अपने अपने रिश्तेदारों की टेक केयर कर लें, मैं अपनों की कर लूँ, हम जितने लोग बैठे हैं हम कर लें, तो दुनिया से गुरबत चली जाएगी। गुरबत चली जाएगी तो बहुत सारी मसले जाएंगे। और एक और बात आपके जवाब में बताऊँ, आप कहती हैं ना कि जो सताएं उनको देने को दिल नहीं करता, आप दे के देखें वो आपको सताना छोड़ देंगे। इंसान जिससे कुछ लेता है ना उसकी बुराई नहीं करता, आजमा के देखें। जो रिश्तेदार आपसे तरह खिंचा हुआ है या चिढ़ा हुआ है या आपके खिलाफ बातें करते हैं ना, आप उसको गिफ्ट भेज दें। आप उसको अगर गरीब है तो कुछ माल दें, उसकी जुबान सिल जाएगी। वो बोलते भी हमारे खिलाफ इसलिए हैं कि वो कहते हैं इनके पास इतनी है मौजें कर रहे हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह।
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم